ಹಯತೆ ಗರಂ ಯತ್ಕೃಪಾತ್ತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವಂ ಶ್ರೀಮನ್ಮದನ ಗೋಪಾಲಂ ಬೃಂದಾರಣ್ಯ ಪುರಂದರಂ ಶ್ರೀಗೋವಿಂದಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಹಂ ದೀನಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಂ ವಂದೇ ಮುಕುಂದಮರವಿಂದದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ ಕುಂದೇಂದುಶಂಖದಶನಂ ಶಿಶುಗೋಪವೇಶಂ ಇಂದ್ರಾದಿದೇವಗಣವಂದಿತಪಾದಪೀಠಂ ವೃಂದಾವನಾಲಯಮಹಂ ವಸುದೇವಸೂನಂ ನವಜಲಧರವರ್ಣಂ ಚಂದ್ರಕೋದ್ಭಾಸಿಕರಣಂ ವಿಕಸಿತನಲಿನಾಸ್ಯಂ ವಿಸ್ಫುರನ್ಮಂದಹಾಸ್ಯಂ ಕನಕರುಚಿದುಕೂಲಂ ಚಾರುಂಬರ್ಹಾವಚೂಲಂ ಕಮಪಿ ನಿಖಿಲಸಾರಂ ನೌಮ್ಯ ಗೋಪೀಕುಮಾರಂ ವಂಶೀ ವಿಭೂಷಿತಕರಾನ್ನವನೀರದಾಭಾತ್ ಪೀತಾಂಬರಾದುರ್ಬಿಂಬಫಲಾಧರೋಷ್ಠಾತ್ ಪೂರ್ಣೇಂದುಸುಂದರಮುಖಾದರವಿಂದನೇತ್ರಾತ್ ಕೃಷ್ಣಾತ್ ಪರಂ ಕಿಮಪಿ ತತ್ವಮಹಂ ನ ಜಾನೇ ಶ್ರೀಹರಿ.
ಬಲ್ಲಭ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮೇ ಏಕ ಬಡಿ ಸುಂದರ ಚೀಜ ಆಯಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಾಧನ ಕ್ಯಾ ಹೈ ವೋ ಬತಾತೆ ಹೈ ವೋ ಸಾಧನ ಹೈ ಸಂತಾಪ. ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹೃದಯ ಮೇ ಆಗ ಕಾ ಜಲ ಉಠನಾ ವಿರಹ ಸಂತಾಪ. ಭಗವಾನ್ ಕೆ ನ ಮಿಲ್ನೆ ಕಾ ಸಂತಾಪ. तो असल में तो विरह कई प्रकार के होते हैं और इसका बड़ा विवेचन है रसशास्त्र में. कई श्रेणियां हैं उसकी, विप्रलंभ की और संयोग की. भूत विरह है, भावी विरह है, वर्तमान विरह है, स्थानांतर ग्रह है, कालांतर ग्रह है. ये कई भेद वैष्णवों ने किए हैं बड़े सुंदर. तो ये जितने भेद हैं ये तो हैं प्रेम साम्राज्य के अंदर प्रवेश करने पर. ऐसा मानते हैं कि जो प्रेम सरिता है निरंतर बहने वाली, इस सरिता के दो तट हैं. एक तट का नाम है विप्रलंभ वियोग, दूसरे तट का नाम है संयोग मिलन. तो विप्रलंभ में वियोग में मिलन का अभाव नहीं है और संयोग में तृप्ति नहीं है. मिलन में तृप्ति नहीं है, संयोग में तृप्ति नहीं है और अमिलन में, विरह में मिलन का अभाव नहीं है. परंतु अमिलन की अनुभूति है मिलन का अभाव न होते हुए भी, और मिलन में नित्य प्राप्त होते हुए भी तृप्ति का अभाव रहता है. तो ये तो ये जो ग्रह है ये ग्रह तो दुखदायी नहीं होता, इसका संताप भी सुखद होता है. इसीलिए ये ग्रह प्रेम के रसास्वादन को बढ़ाने वाला, एक रस का स्तर ही है, परंतु इसके पूर्व भगवान को प्राप्त करने का एक संताप उदय होता है मन में। वो संताप तब तक उदय नहीं होता जब तक पूर्व राग के कारण नहीं बनते। मैंने भगवान ही एकमात्र प्रेम के प्राप्त करने के योग्य परम धन परम वस्तु सद वस्तु मैंने सारी श्रेष्ठता सब प्रकार की जब सब जगह से हटकर एकमात्र भगवान में केंद्रित हो जाती है तब इच्छा प्रकट होती है मिलन की। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मिलन की इच्छा बड़ी मंद रहती है तो विरह भी मंद रहता है। मिलन की इच्छा तीव्र होनी चाहिए, उत्कट होनी चाहिए और अनन्य होनी चाहिए, तभी विरह का उदय होता है, विरह का संवर्धन होता है, विरह का अन्यत्र होता है और विरह अत्यंत प्रबल होकर भगवान को खींच लाता है। तो सबसे पहली चीज है भगवान की महत्ता का ज्ञान। महत्ता का ज्ञान होने पर उस महत्ता की जरा झांकी होती है, वही कहते हैं, उसको कहते हैं अदृष्ट पूर्वराग। अभी देखा नहीं सुना, जैसे श्रीमद् भागवत में आया रुक्मिणी जी का जो पूर्वराग है वो अदृष्ट पूर्वराग है। यद्यपि रुक्मिणी जी भगवान की नित्य सहचरी है, लक्ष्मी है, तो रुक्मिणी जी भगवान की नित्य हृदय विहारिणी है, रुक्मिणी जी से भगवान का कभी वियोग नहीं, तो इस लीला में रुक्मिणी जी जहां भीष्म राजा की कन्या हैं और जहां शिशुपाल के साथ रुक्मिणी जी के परिणय की व्यवस्था हो चुकी है, एक पिता के अतिरिक्त सारा घर बंधु बांधव सभी रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं, विवाह पक्का हो जाता है, बारात भी आ जाती है, यहां तक की घटना होती है। इधर क्या हो रहा है, पहले अदृष्ट पूर्व राग का उदय हो गया रुक्मिणी के हृदय में, अदृष्ट पूर्व राग, कृष्ण को देखा नहीं है, श्री कृष्ण के स्वरूप सौंदर्य की झांकी की नहीं है, श्री कृष्ण के अवयवों का उसे ज्ञान नहीं है, परंतु किसी के मुख से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की, गुण सौंदर्य की, शील सौंदर्य की, मैंने सुंदरता का अर्थ केवल शरीर का रंग वंग नहीं है, शरीर का रंग अत्यंत सुंदर होने पर भी मन अत्यंत कुरूप रह सकता है और मन की कुरूपता शरीर के सौंदर्य को बना देती है आसुरी, वो उल्टा बुरा होता है। मुंह पर कोई मीठा बोले परोक्ष कार्य हंकारम प्रत्यक्ष प्रेवादनम वर्दे तादृशम मित्रम विशुकुंभम पयोमुखम, नीतिकार कहते हैं कि मुंह पर बड़ा मीठा बोले कोई मित्र बना रहे, मुंह पर बड़ा मीठा बोले प्रत्यक्ष प्रीवादनम, प्रत्यक्ष में बड़ी मीठी बातचीत करे पर परोक्ष कार्य हंकारम पीछे से गला काटे, तो कहते हैं वर्जे तादृशम मित्र, इस प्रकार के मित्र का वर्जन कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्यों? विषकुंभम पयोमुखम, ये जहर का भरा घड़ा है, इसके ऊपर खाली थोड़ा सा दूध है, दूध मुहा जहर का घड़ा, तो बाहरी सौंदर्य जगत में बहुत सा ऐसा होता है जिसके अंदर जहर भरा रहता है, तो बाह्य सौंदर्य सौंदर्य नहीं। ये सौंदर्य की जहां पर परिभाषा जाननी हो वहां सौंदर्य की, सौंदर्य एक बड़ी सुंदर चीज है और वो सुंदरता भगवान में ही और कहीं है नहीं। नित्य नव सुंदर और वो सौंदर्य नित्य नव वर्धमान है और उसके साथ अंतकरण का सौंदर्य संपर्कित है, जड़ित है। तो भगवान का शील सौंदर्य, स्वभाव सौंदर्य, इसकी बड़ी महिमा। जहां भगवान के रूप के महिमा है वहां भगवान के शील की महिमा है, भगवान के सद्गुणों की महिमा है, भगवान के चिदानंदमय तत्व की महिमा है। केवल बाहरी रूप के नहीं, यद्यपि उनका बाहरी रूप भी सच्चिदानंदमय ही है, वहां और कोई भेद नहीं। तुलसी राम स्वरूप से लखी जोन जोन भगति हृदय आई, जोन भगति मनाई, तो कहीं जनन जाय जननी जल तन तरुणता गवाई। राम स्वभाव शील लख, राम के स्वभाव को और शील को देखकर यदि तुम्हारे हृदय में राम की भक्ति नहीं पैदा हुई तो माताएं तुमको जन्म देकर व्यर्थ ही अपना तन और तारुण्य खोया। तो ये शील सौंदर्य, तो रुक्मणी ने सुना श्री कृष्ण का शील सौंदर्य, स्वभाव सौंदर्य, रूप सौंदर्य, गुण सौंदर्य सुना, और सुनते ही उनकी ओर चित्त उनका आकृष्ट हो गया, चित्त का दान हो गया। ये रसशास्त्र में मिलन से पूर्व पूर्वराज होता है। पूर्वराज के कई भेद हैं, उसमें दो प्रधान भेद हैं, दृष्ट और अदृष्ट। कल्पना में भी आता है तो उसमें अश्रुत और अदृष्ट होता है, दोनों सुना भी नहीं। स्वप्न में कहीं कोई चीज आ गई, कहीं कल्पना में आ गई पूर्व के किसी अभ्यास वश, तो वहां भी पूर्व राग उत्पन्न हो जाता अनजाने में भी। ये भी कहीं कहीं पर होता है, हैं? हाँ, उषा की तरह से, वो उषा की तरह से यहाँ थोड़े से गुण सुने थे, उषा में थोड़े से किसी प्रकार का देखा था, तो उषा में ही हुआ। उषा का जो है ये अश्रुत अदृष्ट ही है इस प्रकार का। तो ये पूर्वराग, तो भगवान के गुणों को सुना रुक्मिणी ने, रुक्मिणी ने देखा कि अब तैयारी विवाह की हो गई, शिशुकाल आ गया, अब क्या होगा। पूर्वराग का वास्तविक मर्म यह होता है कि जहां वो राग जाकर स्थापित हो जाता है वहां अन्य का राग मिट जाता है। राधिका का जो पूर्वराग है वो बड़ा मधुर है, श्री कृष्ण का पूर्वराग है। इन दोनों के पूर्वराग की जो कथा है, जो तत्व है, वो बड़ा बड़ा मधुर मनोहर है। तो हमारे स्वामी जी तो बहुत जानते हैं, वो कहते नहीं, वो बहुत अधिक जानते हैं, उनका बड़ा इस पर अध्ययन मनन और अनुभव है हमारे उन स्वामी जी। तो ये पूर्वराग जो है ये जब पूर्णतया प्रकट हो जाता है तो और किसी की कल्पना मन में नहीं रह जाती, फिर वो ये नहीं रहता, ये कर्तव्य और होता है। पतिव्रता स्त्री दूसरे किसी का, किसी की सत्ता नहीं मानती, जिसको पिता माता ने दे दिया, जिसको वर्ण कर लिया, वो उसका नित्य पति हो गया। तो वहां धर्म साथ है, धर्म में राज सम्मिलित है, केवल राग नहीं है, विशुद्धानुराग नहीं है, है बड़ी ऊंची चीज पर विशुद्धानुराग नहीं, उसके साथ धर्म है, धर्म के साथ कर्तव्य है। पर विशुद्धानुराग जहां पर है वहां पर वो गैर है कि अपना है ये नहीं देखता, कौन है क्या है, क्या संबंध था, क्या रहेगा, क्या होने वाला है, इस बात को राग नहीं देखता। राग तो चित्त को आकृष्ट कर देता है उस वस्तु के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, और वो राग दूसरे सारे रागों को खा जाता है। इसलिए तमाम वस्तु विराग अपने आप आ जाता है राग में, ये राग ठीक है। तो रुक्मिणी जी ने अब क्या सोचा कि भाई कोई उपाय नहीं, तो रुक्मिणी जी ने चिट्ठी लिखी। बड़ा सुंदर भागवत में रुक्मिणी का पत्र है वो। रुक्मिणी ने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख कर उसने ये बताया कि आज की चीज से दूसरा कोई लेने आ रहा है, इस सिंध के भाग को प्यार झपटना चाहता है, मैं निरुपाय हूं और मेरा ये प्रण है कि 100 जन भी मेरे बीत जाए तो मैं सिवा आपके किसी को वर नहीं सकती, या तो मेरा मरण होगा या मेरा आपके द्वारा वरण होगा, दूसरा कुछ नहीं। ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण पंडित लेकर के उसे गए, भगवान के हाथ में पत्र दिया कि पूर्व राग का जादू भगवान अंतर्यामी सब समझते हैं, इस राग में कितना असलीपन और कितना नकलीपन जान गए कि ये यथार्थ हृदय का संदेश है, भाषा नहीं। भाषा में मनुष्य स्वयं अपने को छल सकता है, दूसरे को भी छल सकता है, पर हृदय की जो भाषा होती है वो विशुद्ध हुआ करती है द्वेष की भी राग की भी। हृदय की भाषा में बनावट नहीं होती, इसीलिए हम लोग कहा करते हैं भाई तुम अपने मन की कैसे ऊपर की कहते हो। हम विश्वास दिलाया करते हैं कि भाई हमारे हृदय की बात आपसे कहते हैं, बनावटी नहीं कहते। तो भगवान समझ गए कि हृदय की भाषा में रुक्मिणी ने पत्र लिखा। भगवान ने कहा महाराज तैयार अभी चलते हैं। अब देखिए पूर्व राग का, भगवान के प्रति आसक्ति का कितना सुंदर फल है कि देर नहीं हुई, उस आसक्ति का संदेश पहुंचना इतनी देर थी, संदेश पहुंचते ही उसी समय दारुक को बुलाया, साहब कोई लिया नहीं साथ, सेना साथ ली नहीं, किसी से सलाह नहीं की घर में, दारू जी को भी बुला करके बातचीत नहीं की, ये संदेश नहीं कहा कि हम जा रहे हैं पीछे से सैन्य भेज देना, वहां शत्रु सेना सारी समवेत है, जरासंध भी आया है, न मालूम कौन कौन वहां पर है और तमाम कटिबद्ध हैं श्री कृष्ण का हनन करने के लिए यहां पर। तो श्री कृष्ण उस राज के वश में होकर, रुक्मिणी के राज के वश में होकर चल देते हैं और पहुंच जाते हैं समय से पूर्व। इधर पीछे से जब दाऊ जी को पता लगता है कि श्याम सुंदर अकेले चले गए, वहां तो शत्रुओं का सारा सामना है, उन्होंने तो सोचा नहीं, सोचते क्या। ये इस प्रकार का संबंध होता है कि वो ये भगवान का जहां प्रेम का संबंध है वहां भगवान अपने सर्वलोक महेश्वरत्व को, अपनी सारी भगवत्ता को, अपनी सारी सत्ता को, अपने सारे बड़प्पन को भूल कर छोड़कर उस प्रेमी के अनुगत बन जाते हैं, उसको बना लेते हैं प्रेमास्पद, खुद बन जाते हैं प्रेमी, माशूक आशिक बन जाता है, आशिक माशूक बन जाता है, परिवर्तन हो जाता है भगवान की ये स्वभाव की विलक्षणता है। तो पीछे से दाऊ जी महाराज गए सेना लेकर के, तो इतना इतिहास कहना है ये पूर्वराग। तो पूर्व राग जब तक न हो तब तक विरह पैदा नहीं होता, चाहे पूर्व राग श्रुत हो अदृष्ट होकर भी, तो चाहे दृष्ट हो, मुरली ध्वनि सुन के पूर्व राग होता था, भगवान की मुरली ध्वनि में इस प्रकार का पूर्व राग एक सखी रही वो नवीन आगंतुक थी, नई आई हुई थी वहां गौना लेकर। तो वो जब घर में आई तो उसने घर में एक विचित्र भाव देखा, उसकी परदबिया सास, उसकी सास, उसकी ननदें, उसकी देवरानी जिठानी, उसके ससुर दादा ससुर, जेठ देवर, सभी के पास एक श्याम सुंदर की चर्चा। कोई वात्सल्य भाव से, कोई सख्य भाव से, कोई किसी भाव से, पर घर भर में उसने सोचा कि घर वाले शायद पागल वागल हो गए हैं। अब अड़ोस पड़ोस के लोग नई बहू को देखने आने लगे तो वहां भी एक चर्चा आ करके पूछती है, समवयस्का समान उम्र वाली बहन, तेने कहेगा कि देखा है, अभी देखा कि नहीं, अच्छा देखना है, निर्दोष भाव, कहीं पर गड़बड़ नहीं। अच्छा देखो, उधर से शाम को आया करता है तो देख ले। बुढ़िया आकर के कहती है, अरे वो नंद का लाला जो है वो बड़ा मधुर है, बड़ा अच्छा लगता है, उसे देखना। ससुर जी आकर के कहते हैं, बहू तू बड़ी अच्छी है, हमारी यहाँ एक बड़ी भारी संपत्ति, अनोखी संपत्ति है, ऐसा धन है कि जो जगत में कहीं नहीं, किसी के पास नहीं। तो सोचा तो यहाँ वहाँ होगा, तो बोली नहीं, ननद से कहा, बोले क्या कहते हैं पिताजी, क्या कहते हैं? तो ननद तो जानती थी नहीं, अरे बोले जो मैं कह रही थी वही कहते हैं ये। ननद ने कहा, पिताजी ये भाभी पत्नी है, तुम क्या संपत्ति, अरे नंद का लाला नंद का लाला संपत्ति। तो जब उसने सब तरफ ये बात सुनी तो वो अभी जैसे कॉलेज से निकले हुए नए लड़के होते हैं ना, कॉलेज की हवा लगे हुए, जिनको प्रैक्टिकल तो कुछ समझ है नहीं, केवल अध्ययन करके आए हैं, ऐसे ही वो थी, उसने कृष्ण का अध्ययन किया नहीं था कुछ भी। तो उसने सोचा कि गांव भर पागल है, ये गांव के लोग जो हैं इनमें बुद्धि बुद्धि सही नहीं। तो ननद समझाने लगी, दुर्भाग्य ऐसी बात नहीं, बड़ी विचित्र चीज है और बड़ी अनोखी चीज है, कहीं जगत में है, ये क्या समझती इसमें दान है, जरा सा नंद का छोरा खुदकता फिरता ऐसे ही है? और तुम सब पागल हो गए, जरा भी अकेले नहीं है, जरा भी सोचने की शक्ति नहीं, न कुल के मर्यादा न घर के मर्यादा, रात दिन न घर का काम, रात दिन कन्हैया 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 पागल हो गई। तो ननद ने कहा, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात, अब महाराज दूर से सुनाई दिया, शाम को बजी मुरली, अब भगवान को तो भगवान श्री कृष्ण का अर्थ खींचने वाला है, और जिसके भाग्य का उदय हो जाता उसको खींचते हैं। तो मुरली बजी, मुरली की धुनी सुनाई दी, तो उसके चित्त में आंदोलन आरंभ हो गया, कान तो थे ही, कान में जब वो धुनी पड़ी तो वो नई बहू जो है अब वो दिखने लगी कि मेरे क्या दौरा सा आ रहा है, शॉक लग गया बिजली का एकदम, उस ध्वनि आते ही तो अब वो लगी पागल सी होने, पागल सी होने लगी, संभालती अपने को भी, क्या कहेंगे सब, वो सब श्याम सुंदर करने लगी, और लगी सब बाहर जाने की तैयारियां करने, आ रहा है ना शाम को, शाम का वक्त जब होता तब तमाम गोपांगनाएं निकल कर अपने दरवाजे पर खड़ी हो जाती, रोज का नित्य कर्म था, बछड़ों को लेकर जब वो आते तो बाहर जाकर के सब प्रतीक्षा करते, मुरली ध्वनि नजदीक आ रही है और वो बच्चों का रब हो हल्ला करते हुए नाचते कूदते फांगते और आगे आगे समान गोवत्स गोधू में उड़ती हुई आ रही है तो देखती अब आ रही है। तो वो सब बाहर जाने लगी और इसके मन में ब्याह हम भी जाए। अब शर्म मन में आए कि जाए कैसे, भी तो विरोध कर रही थी तो रोका 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 रुका नहीं तो ए श्याम सुंदर है कन्हैया बोल उठी और बोल कर मूर्छित हो गई। तो नदी ने आकर के पकड़ा उठा करके कान में श्याम श्याम सुनाया बाहर ले गई। लेकिन तो कहते थे ना सब पागल हो गए तेरे को, अभी तक उसको देखा ही नहीं तो कहीं पागल हो गई। तो महाराज सच्ची बात है भगवान के गुण हम लोगों ने अच्छी तरह सुने नहीं। भगवान के गुण सुन लेने पर क्या ये गंदा जगत हमारे हमारे जीवन में रहेगा क्या? ये तो इतना गंदा है, इतना मलिन है कि यहाँ पर सेवा नरक के और कुछ है ही नहीं। दुखालयम अशाश्वतम, भगवान ने कहा दुखालयम दुखालयम असुखम है दुख। तो ये समझ लेने पर क्या इसमें मन रहेगा? भगवान को जिसका चित्त आकृष्ट हो गया तो ये पूर्व राग सुनकर भी होता है, उनकी चीजों को देखकर होता है। अक्रूर ने देखा नहीं, केवल चरण चिन्ह देखे भगवान के, चरण चिन्ह देखे। रथ पर जा रहे थे श्री कृष्ण को मन में तो था थे, पर समझाने के लिए जा रहे थे और कंस का भय था। उनका मिश्रित आचरण नभला आ गया, उनसे कहा नहीं श्री कृष्ण से कि कंस मारने को बुला रहा है, कंस का डर भी था। लेकिन भाग था मन में, जहां समीप पहुंचे और वो पक्की सड़क तो थी नहीं, पीछ बीच की सुंदर वो रज उड़ रहा था बड़ा बड़ा मधुर। जब वो रथ उधर से चला नीचे को आंख गई तो देखा भगवान के चरण चिन्ह उभरे हुए थे रज में। बस चरण चिन्हों को देखते ही राग उमड़ पड़ा, उतर गए नीचे, उतर करके वहां लौटने लगे। सिर पर लगाया लौटने लगे उस धूल में, ये राग उत्पन्न हो गया संस्कार पहले के थे धूल को देख। तो विरह का उदय होने में सबसे पहले आवश्यकता है राग की, मिलन की इच्छा। अब वो इच्छा जितनी तीव्र होती है, ये विरह की साधना नहीं है, एक स्थिति है। विरह जगाया नहीं जगता, बोले भाई हम किसी साधना के द्वारा विरह को पैदा करने वाली चीज नहीं है ये। भगवत विरह पैदा करने की चीज नहीं है ये, साधना से नहीं होता ये, तो स्वाभाविक भाव का उद्रेक होता है किसी संग से किसी प्रकार से, कोई एक उसका मेथड नहीं। तो इस तरह से जब भाव का उद्रेक हो जाता है तब मिलन की इच्छा होती है, और मिलन की इच्छा जितनी तीव्र होती है उतना ही विरह तीव्र होता है, और जितना विरह तीव्र होता है उतना ही वो भगवान को खींचता है। मैंने भगवान अमना है भला, भगवान के पास मन नहीं है, उनका अपना मन स्वरूप भूत है, वो अलग चीज, वो तो हमारे मन से मनवाले बनते हैं और फिर अपना मन हमें दे देते हैं। तो हमारा विरह ताप भगवान के अंतर में जाके भगवान को संतप्त करता है, और भगवान अपना संताप मिटाने के लिए दौड़ते हैं। अजब बात लगेगी, भगवान को भी संताप होता है। अरे संताप न होता हो तो क्या रोते फिरते सीता के लिए? वृक्ष से पत्तों से जड़ पदार्थों से पूछ रहे हैं क्या बात है, बोले ये भगवान का नाट्य। अरे नाट्य क्यों है, वो तो रो रहे हैं सचमुच। नाट्य है जो नाट्य मानते हैं उनकी दृष्टि में, प्रेमी भगवान को मानने वाले की दृष्टि में ये नाट्य नहीं है, तत्व तत्व भक्त तत्व भगवान का सारा प्रेम समाप्त हो गया। उसने अगर ऊपर की चीज बता दी और मान ली तब तो दम्भी भगवान है, ठगते हैं लोगों को, प्रेमियों को, उनके मन में तो प्रेम है नहीं और खाली प्रेम माया से प्रेम दिखा देते हैं, छलना करते हैं। भगवान छलना थोड़ी करते हैं, फिर जो जो भगवान की प्रेम अवश्यता है उनके स्वभाव में, ये कोई वस्तु रह नहीं जाती, तो ये बात नहीं है। भगवान स्वयं संतप्त होते हैं, उसका संताप मिटाने के लिए, तो उसका संताप मिटाने के लिए नहीं, अपने संतप्त होकर अपना मिटाने के लिए तो भगवान दौड़ करते हैं। तो ये जो विरह है, ये विरह भगवान का इस प्रकार की एक बड़ी बढ़िया वस्तु होता है कि जो उसका स्वरूप यह है कि दूसरी सारी वस्तुओं की सत्ता महत्ता को वो खा जाता है। वो एक गुजराती भक्त ने गाया है, प्रभु नो मार्ग छे सूरानो नहीं कायर नो काम जोने। प्रभु का जो मार्ग है ये सूरवीरों का है, यहाँ कायरों का काम नहीं है। ये देखो वो क्या होता है कि दूसरी सारी की सारी कामनाएं तो हट ही जाती हैं, वस्तु रहती नहीं, वो अपने आप को भी वो दे डालना चाहता है। प्रथम पहलू मस्तक मुखी, अपने सिर को पहरे धर देता है, अपने जीवन को, मैंने शिशिर का धरने का अर्थ यह है कि अपने को वो जगत की दृष्टि में मार देता है। जो जगत में मर गया और भगवान में जी उठा, वो भगवान को चाहने वाला प्रेमी। जगत में मर गया और भगवान में जी उठा, तो जगत में मरने के लिए हम तैयार नहीं भला, जगत में मरने के लिए हम तैयार नहीं, हम तो जगत में जीवित रहते ही भगवान को अपने साथ ले लेना चाहते। भगवान मुर्दे के साथ रहते नहीं, जगत में जीना माने मुर्दा होकर रहना, ये मरा हुआ जीवन है, वो असली जीवन है। तो मुर्दों के साथ भगवान नहीं रहते, वो रहे चेतन वो मुर्दों में नहीं रहेंगे भगवान। तो इस पद में आगे कहा, प्रेम पंथ पावक ज्वाला भाली पाछा भागे जो ने मान पड़ा के महारस माने देख नारा गाधे जो ने। विचित्र बात कही, वो कहते हैं कि ये प्रेम का जो पथ है ये अग्नि की लपट है, पावक ने ज्वाला, पावक की ज्वाला है, भाली पाछा भागे जो ने। इस प्रेम की ज्वाला को दूर से देखकर जो विषयी लोग हैं ये वापस भाग जाएंगे। प्रेम प्रेम की बात तो हम सभी करते हैं, पर जब प्रेम की आग हमारे सब कुछ को भस्म करने के लिए सामने आना चाहती है तब तो दौड़ जाते हैं कि नहीं भैया नहीं सोचेंगे, अभी बिचारे। तो प्रेम की आग सबको खाए बिना हमको अंदर लेती नहीं। प्रेम पंथ पावक ने ज्वाला भाली पाछा भागे जो, यही परवैर आज्ञा है। प्रेम पंथ पावक ने ज्वाला भाली, भाली मैंने देख कर, पाछा भागे जो ने। लेकिन जो प्रेम के पथिक हैं, जो रागी हैं प्रेम के, वे क्या करते हैं कि अंदर झपक करते हैं, झोंक अपने को झोंक देते हैं। वो ये नहीं देखते कि आग से जल जाएंगे, वो तो जलने के लिए आते हैं, पतंगे होते हैं ना परवाने, ये लपट में जलने के लिए आते हैं, अपने को भस्म करके धन्य हो जाते हैं। तो वो तो अज्ञान की आग है, उससे तो बचना पड़ता है। ये जो आग है ऐसी है, इस आग की इच्छा होती है तो अंदर पड़ जाते, पड़ने पर क्या होता है वो इसका रूप बताते हैं। अंदर पढ़ने वालों का क्या होता है, बाहर वालों क्या होता है, कहते मा ही पढ़या ते महारस माने और देखनारा गाधे जोने। विचित्र बात, इस अग्नि के कुंड में जो गिर पड़े उनको तो महान शीतलता महान शांति की प्राप्ति होती है, महान रस मिलता है, और जो बाहर खड़े देखते हैं वो जलते रहते हैं। इस आग में जिन्होंने अपने को झोंक दिया वे तो महान रस के ऊपर रसो गई सह, भगवान का नाम रस है, उस रस की प्राप्ति करते हैं वे लोग जो इस आग में जल आग में गिर पड़े, अर्थात इस प्रेम की आग में, भगवान के मिलन के आकांक्षा की आग में जिन्होंने अपने सर्वस्व को जला दिया वे तो रसरूप भगवान को पाते हैं, और जो बाहर खड़े देखते हैं इस आग में जलना नहीं चाहते वो जलते हैं रात दिन। दाधे, दाधना गुजराती में मारवाड़ी में भी जलने को कहते हैं, दाध गया, जल गया। तो ये ग्रह की उत्पत्ति के लिए दो चीज की आवश्यकता है, वो सभी साधनों में है महाराज, वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा और तमाम वस्तुओं का मन से परित्याग। ये जब हो जाता है जीवन में भगवान को प्राप्त करने की तीव्र उत्कट अनन्य इच्छा और अन्यान्य सारी वस्तुओं की सत्ता का आकांक्षा का सर्वथा परित्याग, ये जब हो जाता है तो मिलन की चाह खूब पूरी पूरी जागृति उस समय ग्रह होता है, वो ग्रह जो है वो सहन के योग्य नहीं होता, वो ग्रह इतना तीव्र होता है कि वो तत्काल भगवान को खींच लाता है। तो ये सोचना ये है कि इस ग्रह की उत्पत्ति कैसे हो, तो साधना से नहीं होती, ये होती है किसी प्रकार से भगवान ने राग पैदा कर, जगत में विराग करने की आवश्यकता नहीं, इस मार्ग में भगवान में राग पैदा करो जगत मिटता चला जाएगा, जितना जितना भगवान अपने हृदय में विराजेंगे उतना उतना जगत तो निकाल देंगे, डंडे मार के निकाल देंगे महाराज, इनको मकान सौंप दो मकान खाली करवाना इनके लिए मामूली बात है। बोले पहले पहले खाली करा के तब इनको मकान सौंपेंगे, तो भाई मुकदमे करते रहो बरसों तक, आजकल तो ये रेंट एक्ट बना हुआ है खाली नहीं करेंगे, पर ये ऐसे शूरवीर हैं, ऐसे ये प्रचंड शक्तिमान हैं कि इनको मकान सौंप दो, दूसरे भाड़े वाले रहे कोई बात नहीं, इनको सौंप दो तो क्या होगा, ये मकान खाली करवा लेंगे, अपने आप करवा लेंगे। इसका अर्थ यह है कि भगवान में राग आरंभ करो, गीता और योग दर्शन में अभ्यास पहले आया है, बैराग का नाम पीछे अभ्यास बैराग अभ्यास कौन थे बैराग नहीं थी ग्रह थे, पहले भगवान में मन, अरे गाय को दूसरे खूंटे बांधना है, यहां से खोल दिया बांधने का कोई खूंटा ही नहीं, गाय खड़ा जाएगी वहीं पर अकेला, विराज क्या करेगा, तो पहले छूटा तैयार करो मजबूत, उन्होंने खाना वाना भी रखो अच्छी तरह से, फिर गाय को यहाँ से खोल करके वहां बांधो तो पहले छूटा तैयार हो गया, अभ्यास हो गया, पहले उसके लिए जगह हो गई, मन जाएगा कहाँ, कहीं रहेगा मन, तो मन के लिए पहले भगवान को तैयार करो, जो मजबूती से पकड़ ले और आनंद भी दे, दोनों चीज, रस्सी भी मजबूत हो और खाना भी अच्छा मिले, तो गाय का मन रुक जाएगा वहां पर, यही तो मन तो बेचारा गाय है, मन गाय है, और जहां बांध दिया उसको बेचारा हटना जानता नहीं, मन की मन का स्वरूप बताया है ये मनोविज्ञानियों ने कि मन में एक खूबी है वो सदाकार हो जाता है, जब तक लगता नहीं तब तक मुश्किल होती है, एक जगह सदाकार हो रहा है ना, जगदाकार मन बन रहा है, इसको भगवदाकार करना है, तो जगताकार मन भगवदाकार सहसा नहीं होता, इसमें मन बेचारा क्या करे, इसको बनाया ऐसे ही गया है कि तुम जहां जहां लगो उसके आकार के बन जाओ, तो उसे उस आकार उसके उसके आकारत्व का उसकी आकृति का विच्छेद करना पड़ेगा, इसीलिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, नए अभ्यास की, कहीं लगे हुए मन को हटाना हो कि नया अध्याय शुरू करे, नहीं तो नहीं हटता। एक लड़का रहा यहाँ का बनारस यूनिवर्सिटी का, वो आज हजी उठता था, ये कोई कई वर्ष पहले की बात है। तो वो मेरे पास आता था, उसने कहा आठ बजे उठता हूँ मैं। मैंने कहा शुरू से पहले उठा कर, बोले ठीक है सर, मन में तो आती है पर नींद आती है। तो मैंने कहा अच्छा एक बात करो, अलार्म घड़ी रखो और घड़ी में जब पाँच बजे तब घंटी रहे तो उठ जाया करो। बोले अच्छा करूँगा। घड़ी रख ली, अलार्म भी बजा, फिर हुआ एक दिन, बोले हमारा तो काम बना नहीं। मैंने कहा कैसे? बोले घड़ी बजती है तब एक बार जागता हूँ, फिर नींद आती जोर की तो घड़ी को बंद करके उसको अलार्म को फिर सो जाता हूँ। अलार्म से काम नहीं होता। तो फिर इससे ये कहा कि तुम कुछ इससे और करा उपाय करो। एक दिन उपवास किया था सच, दो तीन उपवास हुए और हम खुलने लगे। तो पुराने अभ्यास को मिटाकर नए अभ्यास में लगाने के लिए जरा परिश्रम करना पड़ता कड़ाई। नारायण स्वामी ने एक बार बताया था हमसे कि हमको नींद बहुत आती रात को, जब वो सरकारी मुलाजिम थे उस समय के बाद, तो हम रात को जाप करते तो नींद आती, खड़े खड़े करने लगे तब भी होने लगे। तो हमने क्या किया कि ऊपर कड़ी में रस्सी बांध रखी चुटिया को बांध दिया और खड़े हो गए। जब करने लगे, जब नींद का झटका आ गए तो चोटी खींचे तो दर्द हो तो नींद टूट गया। तो नारायण स्वामी ने ये अभ्यासी जो सच्चे अभ्यासी होते हैं ना, वो कोई उनको रस्ता निकालते हैं। बोले हमारे खाने की बड़ी बुरी आदत थी, मिठाई उठाई पर बड़ा मन चलता। तो हम बोले क्या करते, मुरादाबाद में थे, हम क्या करते कि जेब में पैसे भर लेते और शाम को हलवाइयों की दुकानें सजती हैं, तो शाम को प्रतिज्ञा करके सौगंध खा करके निकलते कि मिठाई खरीदनी नहीं है। तो देखते उनको और खरीदते नहीं। तो कुछ दिनों में मिठाई की आसक्ति हो गई। ये जो सिद्धांत है ना फ्रायड का, ये ठीक नहीं है। फ्रायड का जो सिद्धांत है कि भोगों को भोगने से ही उनका उनकी इच्छा का नाश होता है, ये सिद्धांत हमारी आर्य संस्कृति से नहीं मिलता। यहाँ तो दमन ही करना पड़ता भोगों से, तो कभी भोग की आज मिट्टी नहीं। मुझे न काम अगले तुलसी कहूँ विषय भोग बहुत भी। और अब तो फ्रायड के सिद्धांत को वो वहाँ के विद्वानों ने भी खंडन कर दिया है, माना नहीं है, ये सिद्धांत ठीक नहीं। फ्रायड ने बहुत उस पर लिखा, तो फ्रायड का एक पंथ चला। तो ये चीज आ गई थी, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के मस्तिष्क में आ गई फ्रायड की बात कि भाई ये तो खूब भोग से चले जा, भोगने पर जब तृप्ति हो जाएगी तब अपने आप मनाते। ये होता नहीं, शक्ति कारण से हो जा, तृप्ति नहीं होते। वो कहा वो कृष्णा नजीरना भय में वजीरना है, हम चाहे बूढ़े हो जाएं पर हमारी प्यास विषय भोग की बूढ़ी नहीं होती। इसलिए ये सिद्धांत गलत। तो ये उन्होंने क्या किया कि घूमते रहते मिठाई के दुकानों के पास और खरीदते नहीं। इसी प्रकार से जहां तक बने ये बाहरी उपाय हैं, अंदर ही तो उपाय नहीं, राग उत्पत्ति के विषयों से छो अपने को अलग रखे। विषयाशक्ति जितनी भी कम होगी उतनी अधिक सहायता होगी। ये भागवतकार ने तो कहा यहां तक कि भाई उनका संग तो अलग, उनके संगियों के संग से दूर है। संग नाम संगम, जो विषय की आसक्ति बढ़ाने में सहायक जो दो तीन चीजें हैं, उनके संगियों के संग से दूर रहे, उनकी बात अलग रहे। क्योंकि उनके संगियों में जब उस प्रकार के आचरण देखे जाएंगे, उनको देख कर भी हमारी वो आकांक्षा जाग उठेगी, अंदर का शैतान जागेगा। इसलिए ये एक बाहरी उपाय है। जो कोई भी ऐसी वस्तु जो विषयाशक्ति बढ़ाने वाली है उसको हटाओ और निरंतर भगवान में प्रेम की अपने मन में कल्पना करें। मन में भावा भाव की कल्पना करे। और जैसा उस दिन मैंने कहा था, जो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है भगवान से कोई संबंध जोड़ लो, बेटे बना लो उसको बाप बना लो, नौकर बना लो भाई बना लो, ईश्वर बना लो, तो किसी किसी संबंध को लेकर के हम उसके हैं, हम उसके हैं, बस इतना ही तो हम उसके इसका उत्तर मिलेगा, हम तुम्हारे हैं भगवान से देंगे। जब हम कहेंगे भगवान से कि हम तुम्हारे, भगवान तत्काल कह देंगे हम तुम्हारे, मतलब जहां उन्होंने कह दिया बन गया। तुलसीदास ने कहा, बोले महाराज क्या जिक्र कर, कह दो ना एक बार कहो ना आते तुलसीदास मेरे। तुलसीदास ने कहा, बोले एक बार बोल दो ना महाराज अपने मुंह से, राम दो बार बोलते नहीं, तुलसीदास बड़े चतुर, एक बार कहो ना तुलसीदास मेरे, एक बार कह दो ना तुलसीदास मेरा। और भगवान ने तो कही रखा था तुलसीदास से, क्योंकि जो भगवान को अपना कहता है, ये महाराज संसार में बड़ी विचित्र बात, किसी धनी को कोई गरीब जाकर अपना कहे तो लड़ पड़ेगा, हमारी पोजीशन के अनुसार तुम बात नहीं करते, हमको मित्र कहते हो। द्रोण ने अपमान कर दिया महाराज, ये द्रुपद ने अपमान कर दिया द्रोणाचार्य का, बचपन की बात, मित्र रहे, बड़ा प्रेम रहा, संगी रहे, साथी रहे, और जब बड़े हुए राज्य मिला, पहले बात हुई थी कि राज्य अगर हमको मिला तो भैया तुम्हारा हमारा एक ही बात है, आधा आधा रहेगा, तुम भी राजा हम भी राजा। इनके यहाँ गाय थी नहीं, अश्वत्थामा को दूध मिला नहीं, अश्वत्थामा रोया, फुसलाए फुलाए जो नहीं माना, तो सोचा कि चलो द्रुपद के पास आया, अपना दोस्त है। द्रुपद के पास गए, द्रुपद ने कहा, द्रुपद से कहा मित्र, द्रुपद के आंखें लाल हो गई, मित्र कहते दोस्त कहते दुश्मनी, अपमान बोध हुआ, कहा कि भाई अपनी बातचीत हुई थी ना जब विद्यार्थी थे, हम लोग साथ पढ़ते थे, बड़े मित्र रहे, तो बोले क्या ये बच्चों की बात की गारंटी होती है, बचपन में 100 बात करते हैं आदमी, कहाँ तुम और कहाँ हम, ये महाभारत युद्ध का सूत्रपात एक तो यही हो गया। द्रोण ने सबसे पहले गुरु दक्षिणा मांगी कि जाकर इसको द्रुपद को जीत के लाओ, पहला काम ये, समझे। तो कोई भी बड़ा आदमी जो अधिकारी हो, कोई बड़ा अफसर हो, कोई बड़ा धनी हो, उसके पास कोई गरीब जाए मिलने के लिए तो मिलेगा नहीं, तो मिलने में अपनी तौहीन समझेगा, अपमान समझेगा, मिलना चाहे और कहीं मिल भी लिया तो अभिमान से बात करेगा या उसमें रुखाई आवेगी। पर ये भगवान सर्वलोक महेश्वर, ये मामूली अधिकारी नहीं, यम कुबेर वरुणादि इंद्रादि सारे के सारे जिनके भय से निरंतर अपने अपने काम में लगे रहते हैं, ऐसे सबके अधिकारी सर्वलोक महेश्वर, तमीश्वराणाम परम महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वर सर्व शक्तिमान भगवान। और ये कोई गरीब जाता है उसको गले लगा लेते हैं, आओ भैया पहले विरुद्ध हेतु पुनीत पर हरी पामरों में पर प्रीत, ऐसी कौन प्रभु की रीत, प्रभु ऐसे हैं उनका विरुद्ध ऐसा कोई पामर मिल गया लेकिन पापी हटो, ये कभी उनके मुझसे निकलता ही नहीं। माँ कभी रोगी बच्चे को कहती है कि तुम हट जाओ यहाँ से, तो तुम मेरी गोद से हट जाओ, कैसा भी रोगी बच्चा हो कभी माँ से पुरस्कार करती है क्या, दुखी हो जाती है, कल्पना नहीं कर सकते पुरस्कार का। तो भगवान किसी का पाप देखकर, कलंक देखकर क्या उसके लिए अपना दरवाजा बंद कर देते हैं ना। तो भगवान ही ऐसे हैं जो हम चाहे कितने भी अयोग्य हों हमको वो गले लगाने को तैयार हैं। इसलिए भगवान, क्योंकि ये जो चीज है, जो शील भगवान का ही जो गुण, इसको बार बार मन में ला करके अपने मन उनसे प्रेम करें, उनके गुणों को, उनको उनके शील को सुन सुन कर उनसे प्रेम करें, अपने मन को उनकी तरफ आकर्षित करें, तो क्या होगा, वो आकर्षित हो जाएंगे, गरीब की झोंपड़ी पर आ जाएंगे। महाराज जर गए ऋषि मुनि सब, ऋषियों के समूह में दंडकारण्य में जब ये पहुंचे भगवान राम शबरी के यहाँ, भक्तमाल की कथा है, तब तमाम ऋषियों के आश्रम है, शबरी को दूर निकाल दिया कि तुम्हारी छाया नहीं पड़नी चाहिए, शबरी की छाया नहीं पड़नी चाहिए मुनि पर। तो शबरी बिचारी दूर जा करके कहीं रही अलग। तो ये सब मुनियों ने ये सुना कि भगवान राघवेंद्र आ रहे हैं, सब अपनी तैयारी करके गए, सब तैयार हो गए। ऐसा बोले कोई आगे हमसे बात करेंगे, कोई हमसे बात करेंगे, हमसे बात करेंगे, हम हमारा ये संबंध, हमारा ये संबंध, हमारा ये संबंध। तो सब के सब खड़े हो गए, कोई आशीर्वाद के लिए किसी ने फूल लिया, किसी ने नारियल लिया, किसी ने वेदों के मंत्र का स्मरण किया, याद किया, बोले आशीर्वचन बोलना है। किसी किसी के मन में आज हाथ जोड़, हाथ ऊपर से तो उनसे हम जुड़ा, हम जोड़ देंगे, कोई बात नहीं। ऋषि में तैयार हो गए कि महाराज आए, सवारी आई, हाथ जोड़ दूर जा रहे। किसी ऋषि ने कहा आशीर्वाद भगवान आशीर्वाद, हाँ मेरे महाराज प्रणाम, शबरी कहाँ है? तो वो शबरी की कुटिया आपने देखी है पंडित जी महाराज, शबरी कहाँ रहती है? तमाम ऋषियों को आश्चर्य हो गया, डूब गए सब आश्चर्य में कि क्या बात, हम लोग इतने विद्वान बुद्धिमान तपस्वी ऋषि मुनि सिद्ध पुरुष और ये बार बार उस बुढ़िया का पता पूछते हैं भिरंगी का, ये तो ठीक नहीं, लेकिन क्या करें, उपाय नहीं। अब महाराज आगे गए, अब भिलनी का पता पूछते तो ईश्वर से पूछते जाते हैं, महाराज ये नहीं देखते कि भिलनी कौन है, किस जाति की है, क्या उसके पास साधन संपत्ति है, क्या विद्या है, क्या बुद्धि है, कुल गौरव, जाति गौरव, विद्या गौरव, वर्ण गौरव, किसी के प्रति उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ऋषियों की अवहेलना करके उसके आश्रम पर जा पाए। बिचारी डर गई, डर गई। रामचरित मानस ने बड़ा अच्छा लिखा, सबरी परी चरण लपटानी लिपट गई चरण। भक्तमालकार कहते हैं कि डर के अलग खड़ी हो गई, डर के अलग खड़ी हो गई, कहीं भगवान भी ये न कह देंगे तुम्हारी छाया पड़ गई, मुश्किल होगी। तो अलग खड़ी हो गई, चरण पड़ गई, कुछ भी कहिए। भगवान को भूख लगी, भूख लगी, वो भूख लग जाती है उनको, ये ऐसे भूखे हो जाते हैं जाके किसी प्रेमी का घर देखते हैं, मानो कंगले हूँ कहीं के वो अकाल के मारे। हाँ महाराज हम सुनाए, हम कभी आपको सुदामा के यहाँ ये फर्श पर बिखरे हुए दायों को उठाकर खड़े खड़े चबा गए, न हाथ धोना है, न नैवेद्य पाना है, न कोई समर्पण है, कुछ नहीं, खड़े खड़े चबाए गए, भूख मर रहे थे। तो मैया भूख लगी है कुछ है? अब मैया के पास तो बड़े सुंदर फल रहे, बड़े सुंदर फल रहे मैया के पास। तो वो कोई कहते हैं कि जूठे फल दिए, हमको उसमें आपत्ति नहीं है, बिल्कुल सोलह में आपत्ति नहीं, क्योंकि वो जूठे होते ही नहीं। जूठा तो हम बिना भोग लगाए जूठा कर देते हैं, मन से खा लेते हैं। बोले आज घर में प्रसाद होगा, बोले क्या बनाने, अपना मन चलता है बादाम की बर्फी पर, बोले बादाम की बर्फी बना, बनी बादाम की बर्फी, देर हो रही है, बोले जल्दी करो ना, भगवान को भोग लगाना है, अर्थात हमारी जीभ लपलपा रही है, जल्दी करो खाए, भोग तो ना जल्दी से खा लें, काम बने हमारा। तो पहले खाने लगते हैं, अच्छी बनी है ना, ठीक चीनी ठीक जा रही कि नहीं, मेरा कौन सा था, खाने लगते हैं उसको, पहले वो जूठा हो जाता है, जूठा कर देते हैं, बिना खाद रख देते। और सबरी अगर खाती भी, मान लीजिए खाती भी, तो खाती क्यों, राम के लिए स्वादिष्ट चीज रखनी है, वो उसके पास और कोई परखने का औजार नहीं बिचारी के पास, वो कोई ऐसा मीठर उसके पास नहीं कि वो जांच ले कि मीठा है कि कड़वा है खट्टा है, वो तो मुंह उसका मीठर, वो वही जांचने की चीज, तो मुंह में देखे जांच लेती कि भाई ये मीठा है तो रख देती, जूठा कहाँ हुआ, ये मुंह में भगवान नहीं बसते क्या? लेकिन मर्यादा में ये रामायण में जूठी बात नहीं आई, चील की बात यहां ये कहा कि भाई वो किसी पेड़ का फल तोड़ लेती और उसके एक फल को चख लेती, इस पेड़ का फल मीठा, उस पेड़ का फल भगवान के लिए रखती जिस पेड़ का फल मीठा नहीं होता उसके दृष्टि, ये उसकी परीक्षा का एक तरीका मान लेने से वो दोष नहीं आता। दोष तो वो नहीं है, वहां पर वहां दोष नहीं होता। तो महाराज ये मैं ये कह रहा था इस बात पर कि आपके मन में वियोग जागृत हो जाएगा तो वियोग की आग जागृत हो जाएगी, विरह जाग उठेगा तो आपकी तो दशा ये होगी, बोले पत्ता खड़का बड़े नाम आते होंगे, पत्ता खड़का बाहर बड़े आ रहे होंगे, चलो बाहर चलो। अरे बोले ये गोबर तो सूख ही गया, तो मिट्टी गोबर लेके फिर चौकी को, चौकी बना रखी थी मिट्टी गोबर की सबरी ने, उनके कहा सोने का आसन रहा कि धर्मेंद्र को स्वर्ण आसन पर विराजित किया जाएगा, मिट्टी इकट्ठी की गोबर लिया और लीप पोत करके चौकी बना दी। अब ये चीज दूसरी की वो अब दिन में कई बार लीपती है, जरा सी कड़ी पड़ गई तो फिर लीप दे, बैठेंगे राघवेंद्र कहीं कोई डर न जाए कुछ भी, और झाड़ू तो इसका संगी हो गया, दिन रात झाड़ू लिए फिरती बाहर दूर दूर तक कहीं काटा कंकर रह न जा, वहां कौन सी म्युनिसिपैलिटी आती ठीक करने के लिए, बोले भाई ये गवर्नर आ रहे हैं तो पचड़ी सारे इंतजाम करो, रास्ता साफ करो, पुलिस तैनात कर दो, सब जगह ठीक रहे। वहां तो भगवान रामचंद्र वनवासी राम आ रहे हैं, वनवासी राम आ रहे हैं, कौन सी तैयारी है, पर ये इसकी तैयारी कहीं कांटा न गड़ जाए, कोई कुछ न गड़ जाए, कहीं कंकर न गड़ जाए, दौड़ती बाहर जाती आए अब आए अब आए। तो महाराज आप विरह जागृत कर लीजिए मन में, फिर भगवान आपके घर को पूछते ही आ जाएंगे, आपके घर को पूछते हुए आएंगे, लोग चाहे आपसे न बोले तो वो आपके पास आएंगे, आपके पास आकर के बोलेंगे कि भाई हम तुमसे मिलने आए हैं, हम तुमसे मिलने आए हैं। ये भगवान की भगवत्ता में यही महत्ता है कि भगवान जहां जहां पर प्रेम देखते हैं वहां वहां पर अपने सारे बड़प्पन को भूल जाते हैं, और बड़प्पन को न भूलें तो प्रेम का विकास हो ही नहीं। यशोदा मैया का वात्सल्य, यदि भगवान भगवत्ता के लिए बैठे रहे तो वो तो डरी हाथ जोड़ते रहे, बोलिए नारायण ही कन्हैया बन के आ गया है तो हाथ जोड़े कन्हैया के आगे, और नहीं तो नारायण के आगे हाथ जोड़ती है कि नारायण कन्हैया का मंगल करना भला, इसको कहीं नजर न लग जाए, गाय को पूछ फिराती है जाकर के, अभी सिंचन कराती है, अभिषेक कराती है, क्यों कराती है, बच्चा है। तो वहां कभी ये चीज जागृत हो जाए मन में कि भगवान है, तो भगवान क्या करते हैं वहां छोटे बन के रहते, बड़े बन के भगवान नहीं रहते भक्तों के सामने, वो तो वहां बड़े बनते हैं या तो राक्षसों के सामने या आचार्यों के सामने बड़े बनते हैं, क्योंकि आचार्यों के आचार्य आचार्यत्व की रक्षा जो है ये बड़े भगवान छोटे छोटे से नहीं होते, क्योंकि छोटे भगवान तो अपने मिलने वाले होते हैं और बड़े भगवान को आचार्य मिलाया करते हैं। ये सिद्धांत है भला, वहां तो तर्क सिद्ध न्याय सिद्ध जो वस्तु होती है वो आचार्य के द्वारा दी जाती है, वहां शास्त्र है, निचोड़ है, उसका सार है, उसकी प्रक्रिया है, उसका सारा साधन सामग्री है। तो आचार्य के भगवान जो होते हैं तर्क सिद्ध होते हैं, और न सिद्ध हो तो आचार्य हार जाते हैं, वहां शास्त्रार्थ होता है, पर इन भक्तों में शास्त्रार्थ नहीं होता, ये कहते हम तो हार गए, हमारे भगवान को हम छोड़ेंगे नहीं, तो तुम हारना मानते हो तो हार गए। जीव गोस्वामी के पास, ये रूप सनातन गोस्वामी के पास गया दिग्विजयी पंडित, बोले महाराज करो शास्त्रार्थ, बोले हमें तो आता नहीं, जी तो सही करो हार गए आ रहे थे रास्ते में मिल गए जीव गोस्वामी, जीव भी जरा कर्म थे और जरा अधिक विद्या था, पुण्य भान था, बोले तुम कौन हो, जीव हो तुम, क्या करें, बिल्कुल हम तुम्हारे ताऊ को हरा करके आए हैं, ये देखो सही, या तो शास्त्रार्थ करो नहीं तो सही करो, मेरे चक्कर शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ किया तो दिग्विजय जी हार गए, दिग्विजय जी हार गए तो बड़ा दुख हुआ, तो पहुंचे सनातन के पास, ये तो शर्मा गए कि हमने हरा दिया, बहुत बुरा किया। गौरव नहीं आया जीत का, अपनी वैष्णवत्व थी वहां पर, उन्हें कमी मालूम दी कि वैष्णव किसी को हराता है क्या, ये तो सबका दास है, सबके भगवान को देखता है, ठीक नहीं किया। सकुचाए वो गए विजयी उदास में, सनातन के पास गए। सनातन ने पूछा महाराज उदास कैसे, बोले सनातन हम तो समझते थे कि तुम लोग वैष्णव हो, तुम्हारा भतीजा तो बड़ा उद्दंड मालूम है। बोले महाराज कैसे, बोले उसने शास्त्रार्थ किया मुझसे और वो कहने लगा तुम हार गए। बोले महाराज उसने बड़ा पाप किया, बड़ा पाप किया, आप क्षमा कीजिए। और उसी समय कह दिया अपने साथियों से कि जीव गोस्वामी से कहला दो कि मेरे पास आया मत। कितना बड़ा दंड दिया, कितना बड़ा दंड। उसके बाद फिर जीव ने अनशन शुरू कर दिया था।
हरिओम सत्संग।